Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya.
Namaskar, Shubh Sandhya, Market Mantra mein aapka abhinandan. आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ श्रोताओं शेयर बाजार की गंभीर चार पर भी नजर रखेंगे और चर्चा करेंगे. आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं स्टूडियो में वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ और विश्लेषक उदयन रे. उदयन, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
धन्यवाद प्राची.
चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
थैंक यू प्राची. Benchmark domestic indices decline, Sensex falls over 900 points, Nifty settles below 23,800. Major Asian indices end in negative zone and global crude oil prices rise.
देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में गिरावट, सेंसेक्स 900 से ज्यादा गिरा, वहीं निफ्टी 23,800 के नीचे बंद हुआ. प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांकों में आई गिरावट और वैश्विक कच्चे तेल के दाम बढ़े.
And before we begin the program, an important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
श्रोताओं, आइए रुख करें शेयर बाजार में हुई आज की हलचल पर. देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगातार पांच दिनों से जारी तेजी का सिलसिला टूटा और लगभग 1% की गिरावट आई. सेंसेक्स 931 अंक गिरकर 76,632 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 222 अंक गिरकर 23,775 पर आ गया. बाजार कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच घाटे के साथ खुले. भू राजनीतिक अनिश्चितता और पिछले सत्र की शानदार तेजी के बाद मुनाफा वसूली के कारण दोनों ही सूचकांकों में पूरे सत्र में गिरावट देखी गई.
Benchmark domestic equity indices fell around 1% today, snapping a five-day rising streak. The Sensex declined 931 points to close at 76,632, while Nifty dropped 222 points to settle at 23,775. Earlier, the markets opened on a negative note amid weak global cues. Both indices traded with losses throughout the session, weighed down by lingering geopolitical uncertainty and profit booking following a stellar rally in the previous session.
Sensex में शामिल 30 में से 21 कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए. सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयर में सबसे पहला नाम इंडिगो का 3.6% से अधिक, लार्सन एंड टूब्रो 2.7% से अधिक और इटर्नल 2.3% से अधिक गिरा. वहीं BEL लगभग 1.5%, पावर ग्रिड, NTPC और TCS में लगभग 1% से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई.
Among the sectoral indices at the BSE, 14 out of 25 sectors ended in the negative territory. Among the major laggards, top 10 banks fell nearly 1.9%, financial services slipped 1.4%, and services lost over 1%. Conversely, capital goods rose over 1.6%, metal advanced by 1.3%, and power gained almost 1.3%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,150 companies advanced, shares of 2,137 companies declined and shares of 133 companies remained unchanged.
और अब जानेंगे रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे कमजोर होकर 92.67 रुपए पर बंद हुआ. डॉलर सूचकांक, जो अन्य छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमेरिका की डॉलर मजबूती को दर्शाता है, वो दिन के कारोबार में 98.94 पर कारोबार कर रहा था. उदयन, बाजार में जो आज गिरावट आई है, उसे हम अगर एक आम दर्शक की तरह देखें तो नजर आता है कि भू राजनीतिक तनाव और मुनाफा वसूली के कारण बाजार में गिरावट आई और आज ऑफकोर्स सेंसेक्स एक्सपायरी भी है, मगर क्या केवल यही कारण है आज की गिरावट के, या फिर इससे जुड़े और भी कारण आपने पथ्य में देख पा रहे हैं?
देखिए, ओवरराइडिंग जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो तो जियोपॉलिटिकल इश्यूज ही हैं. और की पार्ट ये है कि एक तो जो जो संघर्ष चल रहा था, जो कि चल रहा है, वो तो था ही, पर अब मार्केट जो है वो उसकी नजर और पैनी होती चली जा रही है। वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट्स में क्या तेल का आवागमन, जो मूवमेंट ऑफ ऑयल, वो हो पा रहा है कि नहीं। अगर हो नहीं पा रहा है तो कितने दिन में होगा? अगर वो होना शुरू करता है तो ये जो तेल का जो ये संघर्ष शुरू होने से पहले, 28 फरवरी में होने से पहले जो स्थिति थी उसको वापस आने में कितना वक्त लगेगा? नंबर वन तेल, नंबर टू जो है आपके जो प्राकृतिक गैस है
जी,
उसका क्या सिचुएशन रहेगा? तो क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास, अनिश्चितता आ रही है, मूवमेंट नहीं आ रही है, तो अगर जो एक ऑप्टिमिज्म रिलीफ रैली या जो भी कही है,
जो
अपवर्ड मूवमेंट जो आपने देखी थी, उसमें एक ठहराव या गिराव चारों तरफ ही आएगा। मुझे लगता है कि ऐसे ही चलेगा जो ये मेरे ख्याल से शुक्रवार को वार्ता होने की बात शनिवार को बात की जा रही है, तो ये तब तक मार्केट इसके ऊपर नजर रखेगी। अगर वो उसमें पेसिमिज्म आ जाता है तो फिर मार्केट उसमें नेगेटिवली रिएक्ट करेगी, नहीं तो फिर इसी तरीके का ही माहौल बना रहेगा। अनिश्चितता रहती है और इतने फंडामेंटल मूलभूत चीज जो तेल है, एनर्जी सप्लाई जो है वो मूलभूत है हर चीज में, चाहे आपकी सेवाएं हो या आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो, हर चीज में तेल की जरूरत है। इट्स लाइक ए लाइफ ब्लड, खून की तरह, शरीर में जो खून होता है रक्त की तरह है। तो उस जब तक उसमें आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट्स जो हैं, वहां पे आप ये ऐसी ही प्रतिक्रिया देखते जाएंगे।
उदयन, यू सेड ऑफ कोर्स दैट टिल द टाइम दिस अनसर्टेनिटी कंटिन्यूज एंड वी डू नॉट नो what is, you know, nobody can look into the crystal ball and say this is what's going to happen. But till the time this uncertainty continues, until the time we see there's going to be continuation of volatility in the markets, from investment point of view, what are the, you know, again, it may not sound very good, but for an investor, what are the positives in this particular scenario? Like, how can they, you know, minimize their losses and maximize their gains?
So maybe I'll just expand your thing a little bit more. So I would say there are a couple of things I would like to expand this a little bit, the coverage a little bit. So I'll say that, so for instance, if you have loans, outstanding loans, and if you have funds, so maybe a smarter thing to do at the moment is to knock off those loans.
Okay.
So what happens is, because that's a fixed cost,
right?
That's burdening you every now and then, and your money, you know, you're not sure how much your money is going to earn. When it's, even it goes to the gym and works out, it's not going to grow that muscle that you want.
Mm-hmm.
Okay. So because that is not definite, but your interest payout is definite, first thing you should do is knock a credit card outstanding, knock it off. If you cannot knock it off fully, do it as much as you can. Then go to the next most expensive loans, maybe a car loan. Then go to a home loan. Now there are tens of people who will say, ye loan lo, to fir ye ho jaye, market mein dalo. That's all nonsense as far as I'm concerned. Pocket mein se aapko definite paisa ja raha hai. Aapka investment ka return, you don't have an idea.
Yeah.
So that's number one. Number two is you must have a little bit more of buffer.
Mm-hmm.
So which means on the shorter end of an investment, you probably might need to have an emergency, not might, you should always have an emergency fund.
Yes.
If you don't have one, then try to have a fund of the size of 3 months of expenses at least. And then look at, don't try to do anything about your existing investments.
Mm-hmm.
Fresh investments, look at things which are going to rebound at the earliest,
right?
Okay, or do well. So a multi-asset fund,
yes,
will be a better bet than a pure equity.
Yes.
A reasonably Nifty 50 kind of index fund will be slightly better. So instead of trying to fix what you can't fix at the moment, because you don't know, if you have invested in small cap, no point in selling it at a loss at
absolutely
the moment. Okay. Don't do anything if there are fresh investments out there. So that's how you will change the composition of investment. Mm-hmm. Work on the portfolio instead of trying to fix a single investment.
Right.
So if you do these three, this is more than enough.
उदयन, अभी आपने जैसा कहा कि वर्क ऑन योर पोर्टफोलियो की बात, तो इसी के संदर्भ में एक और सवाल ये उठता है, मैं श्रोताओं की तरफ से आपसे पूछना चाहूंगी कि किस तरीके से, कौन से ऐसे क्षेत्र विशेष हैं जिन्हें चुना जाए वर्क करने के लिए?
आप मतलब स्टॉक्स के बारे में कह रहे हैं?
सेक्टर्स के बारे में।
देखिए, अगर आप सिंगल सेक्टर इस वक्त लेंगे तो आप जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्टमक फॉर रिस्क, इस वक्त स्टमक फॉर रिस्क शायद आप ज्यादातर जो श्रोता हैं उनके पास वो स्टमक नहीं होगा, गमछन नहीं होगा, क्योंकि आप गिर रहा है, आपको पता नहीं, आप कहेंगे वो कह रहा सोना, वो कह रहा ये वो, सो डोंट गेट इन टू उस मेस में ना जाके आप सीधे आप सोचिए कि इंडेक्स फंड या ETF वो भारत के बेस्ट कंपनीज का एक शेयर की तरह है। ओके, सो ऑल द 50 बेस्ट इज एक शेयर में है, उसके एक वेटेज है
जी।
तो उसको स्टॉक मार्केट का रिप्रेजेंट कर रहा है इंडेक्स फंड, खरीदना है बस वही खरीदिए, और उसमें आपको एक्सेस कुछ करने की जरूरत नहीं, जो आप रेगुलर टाइम में करते हैं वही करना है। अगर एक साल बाद आपको अंडमान घूमने जाना है
जी।
या कहीं कहीं और जाना है महंगा, उसके लिए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आपको 6-7 साल बाद घर बनाना है,
यानी लंबे समय तक के लिए अगर आपके लक्ष्य हो।
हाँ, और अगर दिस एक्चुअली इज द बेस्ट टाइम टू गेट स्टार्ट, अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया इससे बेहतर टाइम और हो नहीं सकता, क्योंकि अब गिरा है।
क्या कारण ये कि बाइंड डिप
वाली करने, आप रेगुलरली हर हफ्ते हर महीने जो भी आपको बेहतर लगे रेगुलरली करिए, भूल जाइए कि कौन कहां पे इंडेक्स है नहीं है, क्योंकि जितना गिरा है
जी।
जितना वो जो खुमार जिसे कहते हैं वो खुमार साइड में हो गया है, अब बेसिक्स पे बात आ रही है, तो इट्स अ मच मोर सेंसिबल पॉइंट।
वैल्यूएशंस आर मच मोर रियलिस्टिक नाउ,
इट इज मच मोर रियलिस्टिक। क्या आप पूछ रहे हैं कि अब भाई साहब इसका ये पैसा मैं डालूं कब मेरे को इसमें गेन्स मिलेंगे, सो दो हार्ड क्वेश्चन। पर ये पहले था कि कुछ भी डालो वो तो बढ़ेगा ही
जी।
आप सो भी जाओ तब भी मार्केट, अगर जाग रहे हो तब भी, एक दिन सोए रहे अगले दिन फिर मार्केट ऊपर चला गया, सो दोस काइंड ऑफ एबनॉर्मल कंडीशंस हैव स्टॉप्ड नाउ, सो दैट्स गुड, एक्चुअली दैट्स गुड, एंड फॉर इन्वेस्टर्स दिस इज अ फैंटास्टिक टाइम। सो अगर आप रेगुलरली करें, और ये सब हम जैसे एक्सपर्ट भी, जैसे आप प्रोग्राम के शुरू में कहते हैं कि अपना दिमाग लगाएं, अपना विवेक का इस्तेमाल करें, वो कीजिए, और इसमें आप लॉजिक देख लीजिए, क्योंकि अगर वो आप अगर ब्रॉडली आप इंडियन इक्विटीज में डाल रहे हैं, हाउ बैड कैन इट बी, आप अब देख लीजिए इवन इन दिस मोमेंट सब 7% या 7% ग्रोथ के बारे में बात हो रही है, अब लगा लीजिए एक निफ्टी 50 कंपनी कैसे क्या ग्रो करेगी, तो इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपको आपके पे आउट्स रेगुलर जा रहे हैं, आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है, पर्सनल लोन लेकर उसकी छुट्टी फौरन करें, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपका बर्डन कम हो जाएगा, दूसरा आपके एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड अगर प्रेशर है इमरजेंसी फंड ठीक करेगा, और फ्यूचर के लिए आप इधर, तो थ्री वे मैंने आपको बताया।
और उसमें ये भी होगा, जैसे आपने कहा कि अपने लोन्स चुकाइए, अपने क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन्स जो भी, तो जब आपने वो एक एसेंशियल्स अपने, जब आपने यू टेकन केयर ऑफ दोज एसेंशियल्स, देन यू नो एग्जैक्टली हाउ मच इज देयर इन योर किटी, एंड नाउ देन यू कैन प्लान इट अकॉर्डिंगली।
देखिए, अगर आप EMI दे रहे थे, वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ डूइंग इट, EMI आपको देना ही पड़ता है
जी।
तो जैसे आपने EMI खत्म कर दी, आप खुद को कहें कि ये EMI जो है अब मैं SIP करूं।
Exactly, that's what I meant.
So it's उल्टा घुमा दीजिए उसको, घुमा के वो डिसिप्लिन आप इन्वेस्टमेंट में ले आई, एंड दैट वुड वर्क फॉर यू।
एक और भी महत्वपूर्ण बिंदु जो है उसको मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगी, जो कि FII की निकासी है। तो FII की निकास, हमने वेंसडे को भी देखा कि 2,811 समथिंग क्रोर जो है वो निकल गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो हमारे जो निवेशक है उनके मनोबल को या उनके मनोविज्ञान को किसी तरीके से अभी के सिनेरियो में प्रभावित और ज्यादा कर रहा है?
नहीं, देखिए मेरे को, मैं इसके बारे में तो, उनके मनोवैज्ञानिक स्थिति के बारे में तो नहीं कह सकता, बट वी आर होल्डिंग अप प्रीटी वेल। हम लोग मतलब आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, हम लोग जो पीछे जितने इन्वेस्टर्स आए पोस्ट कोविड, दे आर स्टिल डूइंग अ मार्वेलस जॉब, एंड आपके इट्स होल्डिंग अप वेरी वेल, इट्स होल्डिंग अप वेरी वेरी वेल। देखिए फॉरेन इन्वेस्टर्स का लॉजिक है, क्योंकि आप सीधे अगर अमेरिकी बॉन्ड्स में जाते हैं, ट्रेजरीज में जाते हैं, वहां पे आपके यील्ड्स बढ़ रहे हैं, सो आपको कम रिस्क में अगर ज्यादा रिटर्न मिलता है. सी कई बार क्या होता है, डिफरेंस क्या है, एक लोअर रिस्क इन्वेस्टमेंट एंड इक्विटी जैसे हायर रिस्क इन्वेस्टमेंट, अगर गैप कम होता चला जा रहा है जो कि इस केस में हो गया, तो नेचुरली आप सेफ बेटर. तो आज एक पीपीएफ को अगर आप बिल्कुल स्टैंड अलोन देखें, उसका रेट, क्योंकि पोस्ट जो उनका इसका इंटरेस्ट रेट है वही उसका पोस्ट टैक्स रेट है, क्योंकि इट्स टोटली टैक्स एग्जम्प्ट. तो ये 10% प्लस है, और यहाँ पे आप इक्विटी में रिटर्न देख लीजिए एक साल, तो कोई भी कहेगा कि वो कहेगा कि यार इसमें हमें पीपीएफ में लगाना, बट दैट इज नॉट द वे टू लुक एट इट. बट एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर विल लुक एट इट बिकॉज दे हैव टू मेक मनी.
राइट राइट. रुख करते हैं अब एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ. श्रोताओं, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांकों में गिरावट आई. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.6%, जापान का निके और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 0.7% से अधिक गिरा. हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 0.5% से अधिक गिरा, जबकि सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स लगभग 0.4% नीचे बंद हुआ. बात करें यूरोपीय सूचकांकों की, तो प्रमुख यूरोपीय सूचकांक भी आज नकारात्मक रुख के साथ कारोबार कर रहे थे. जर्मनी का डैक्स 1%, फ्रांस का कैक 0.7% और लंदन का फुटसी अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक 0.2% से अधिक की गिरावट के साथ कारोबार करता नजर आया.
Now let's take a look at the US markets, how they behaved yesterday, that's Wednesday. Major US indices closed sharply higher on Wednesday after a two-week ceasefire between the United States and Iran lifted investor sentiment. The Dow Jones Industrial Average jumped over 2.8%, Nasdaq Composite Index climbed 2.8%, and the S&P 500 added 2.5%. So, Udayan, obviously, like you just read that, yesterday, the major indices, of course, US indices ended in green. But if you look at the futures market, just before we started the program, so we can see that, you know, that sentiment, that back to the red zone sentiment, you know, happening there also. The S&P 500 was down 0.24%. That I'm talking about the futures now. Dow Jones was down 0.34% and Nasdaq was down 0.16%. So it's all up. Matter of, you know, how you, it's all optics and how you look at it. It's all sentiments in the markets right now.
Yeah, I mean, the key part is that you need information to make an investment decision. When that information is not available, then you start using proxy. You try to estimate, you know, right. If this is happening, then I'll do this and this. So you're preparing, you're feeling, you're touching and feeling. You don't have anything that you can grab and put a finger on. So right. that is something that you can, and this is going to continue.
Right.
Till you get a definite idea of what's going on. Because it's so important. Because your fuel prices are up, then that means your profitability is down. Absolutely. And then it makes it, for an investor, a stock, if a profit of a company is going down, what am I as an investor? I'm going to be partaking in the profits,
exactly.
Right? The two parts of return. One is the dividends, the other is the capital appreciation. Both are getting affected. So therefore, it becomes less attractive. So that's exactly what's going on.
Let's move on to the next item. Joint Secretary in the Department of Pharmaceuticals, Satya Prakash T.L., today said that concerned departments are working in close coordination to ensure uninterrupted supply of essential pharma inputs in the country. During an interministerial briefing in New Delhi on the West Asia crisis, Mr. Satya Prakash said that global supply chains of pharma inputs have been disrupted due to the crisis.
There is no major increase in sales prices of drugs and pharmaceuticals. In order to support pharma industry and to maintain the availability of inputs, feedstocks and also APIs, Department of Revenue through notification dated 1st April 2026 has slashed custom duties of 40 various petrochemical products to zero.
Udayan, of course, you know, we've been discussing in quite some detail, you know, we were discussing the markets earlier. But if you look at the bigger picture, if you look at the macroeconomics, so far as India is concerned, a report, World Bank report that came out yesterday, and which said that it has growth, you know, predicted the growth forecast for India at 6.6% for the current fiscal, which is 26-27, whereas earlier last October, the World Bank had predicted it as at 6.3%. So there's a 30 basis point, you know, upgrade for India, which is almost comparable to what RBI also gave out yesterday. It's pegged India's growth at 6.9% for fiscal 26-27. So in all this gloom and doom, which is, you know, we've been talking about what is happening, how do you see this? Although, of course, relatively it's still lesser than 25-26.
Meera, ek isi mein anubhav main aapke saath hi jodna chahungi apna sawal bhi aur main chahungi aap jawab dein sir ki ये जो वैश्विक अभी बढ़ती ऊर्जा की जो कीमतें हैं ये किस तरीके से इस पर इफेक्ट करेगी इस प्रोजेक्शन पर?
ऑलरेडी तो कर दिया है उन्होंने डाउन कम तो कर ही दिया है सो वो एक असर पड़ रहा है. क्या इस ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है रेजिलियंस, इंटरनल स्ट्रेंथ को दर्शाता है कि एक हम लोग बिकॉज डाइवर्सिफाइड एट अ सर्टन लेवल है. हमारा एक इंटरनल मार्केट है, वी आर नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट, वी आर वेरी लेस, निर्यात के ऊपर हम लोग लेस डिपेंडेंट है, पर हम इम्पोर्ट्स के ऊपर भी तो डिपेंडेंट है. जैसे कि आप फार्मा में आप देख रहे हैं कैंसर ड्रग्स, दूसरे ड्रग्स जो हैं, इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स में भी चैलेंजेस आ रहे हैं, हमारे ग्लास के फैक्ट्रीज हैं, दूसरे फाउंड्रीज हैं, सब में दिक्कतें आ रही. सो इंटरनेशनल शिपिंग में भी दिक्कत आ रही है, जो ऑफटेक होता है. हम जो मैं बताता चलूं कि यूएई इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर्स फॉर अस, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं कर रहे हम लोग. तो ये सिर्फ तेल पे नहीं है, काफी कुछ चीजों में आम के एक्सपोर्ट्स, आई मीन यू वुड इट्स नॉट huge in that sense if you look at the overall basket, but jo kar rahe hain niryat unke liye important hai. So it shows resilience, but how do we see it overall? Ab jab aapka downward revision hota hai GDP ka, hamari dikkat kya hai ya challenge kya hai ki hamare yahan pe youth kafi aa rahe labor force mein har saal bahut zyada. Agar growth ek certain level pe nahi aayega, जो कि ये 6.9 से वो काम नहीं हो रहा है, होगा तो वो हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे. दैट क्रिएट इकोनॉमिक एक पोटेंशियल अनटैप्ड रह रहा है, एक सोशल इशू बन जाता है. तो ये काफी कुछ चीजें जो हैं, ये ऐसा नहीं कि इसका फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट है ये जो तेल हमारे पास नहीं आ रहा या डिस्टर्ब हो रहा है, सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट ये है.
पर इसकी ये भी तो बात है कि उदयन की हम जब बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक ने कहा कि द फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन इन द वर्ल्ड राइट नाउ इज साउथ एशिया, एंड इवन अमंग साउथ एशिया इट्स इंडिया विच इज ड्राइविंग, यू नो इट इज द बेस्ट, इट इज अ ड्राइवर ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रोथ. तो उस तरह से अगर हम देखें तो आप मानेंगे कि लाइक आई सेड अर्लियर, इस सब ग्लूम और डूम के बीच में भी भारत एक जिसको हम बोलते ना कि दैट किरण की जो हम एक आशा की किरण को जो हम कहते हैं
यार, उसमें तो कोई डाउट नहीं है. इट्स अ रिमार्केबल थिंग बिकॉज इफ यू लुक एट यूरोप, यू डोंट वांट टू डिस्कस इकोनॉमिक्स आउट देयर बिकॉज थिंग्स आर, यू फील डिप्रेस्ड सॉर्ट ऑफ. I don't know, maybe I should, that's me, a more extreme word I have ended up using. So you don't feel excited about talking economics globally, but an economy of this size growing at this kind of rate is very, very impressive in these times. But we have some very formidable challenges. And I think everybody in government, administrators at the state, at the union level, federal level, they are all aware of it. So even as we are impressed with our resilience, let's not lose track of what we are getting deprived of.
Right.
For no fault of ours.
Yes, absolutely.
This conflict
factors which are beyond our control.
This conflict is not of our making.
Absolutely.
Still, the youngster who's passing out this year will face some challenges.
Okay. And you know, when the World Bank report, I'll just again quote from the World Bank report, as one of the factors that the World Bank report is saying for India's, you know, growth, economic growth, is also the free trade agreements that we have had, you know, in, recently had. So amongst the, you know, free trade agreements that we've had recently is, of course, the one with the US. And Commerce and Industry Minister Piyush Goyal recently stated that it is India and the United States share one of the world's most consequential economic partnerships forged on shared democratic values. And he also said that the partnership between the two countries and the bilateral trade is growing rapidly. So how do you see it? Because, you know, at the end of the day, at some point, once all this is behind us, hopefully, and, you know, how important are these free trade agreements for us? One, number two, but given the present situation, we can't help but come back to the present situation. How are they going to, because we may be doing very well, but the countries that we export to, the countries we have free trade agreements with, यूरोपियन कंट्रीज लाइक यू सेड दे आर नॉट डूइंग सो वेल सो इट्स गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन आवर
इंडस्ट्री और इस पार्टनर्स मैं फिर ऐड करना चाहूंगी इसमें कि इस पार्टनरशिप से जिसकी बात की गई है इसमें किस तरीके से एमएसएमई जो हमारा जो एकदम आधारभूत स्तंभ है हमारी इकोनॉमी का उसको किस तरीके से राहत मिलेगी.
देखिए उनको अलग अलग नए मार्केट्स मिलेंगे जहां पे वो सीमलेसली घुस पाएंगे. तो आप एक एक ही शॉट में अगर 27 मार्केट्स आपको खुल जाता है एट सम पॉइंट आपको ट्रेनिंग वगैरह चाहिए होगी क्या क्या एडियर करना है पर वो तो एक स्ट्रक्चर आ ही जाएगा. बट द पॉइंट इज ये तो बहुत जबरदस्त बात है कि हम लोगों ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किए हैं पर इसके बेनिफिट तुरंत नहीं मिलने वाले क्योंकि इसको इसको कार्यान्वित करने में इम्प्लीमेंट करने में वक्त लगेगा क्योंकि लेजिस्लेटिव लॉज मैनुअल्स आपके सॉफ्टवेयर आपके टैक्सेशन
तमाम औपचारिकताओं के बीच से
तो लोग कई विदेशी जो हैं कहते हैं कि आपके यहाँ पे फीताशाही है ब्यूरोक्रेसी है उनके यहाँ कम है उनके यहाँ भी फॉर्मेटेबल है
जी.
ठीक है ना तो ये भारतीयों को बिल्कुल ऐसी बातें जब सामने आती हैं कोई कहता है मीडिया रिपोर्ट्स में फॉरेन मीडिया रिपोर्ट्स में बिल्कुल से ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है तो इन चीजों में वक्त लग जाता है और मुझे लगता है ये मोर मीडियम टर्म से ओवर अ पीरियड ऑफ टू इयर्स दो साल के एक साल सवा साल के बाद से आपको हल्के हल्के फर्क नजर हो सकता है कि आपको मिल जाए पहले पर अगर पूरा सिस्टम क्लियर नहीं होगा तो फिर आप कैसे वो करेंगे आप प्रोस्पेक्ट करेंगे कनेक्ट करेंगे स्केल अप करेंगे आपका इन्वेस्टमेंट होगा आप वहां पे मार्केट्स
इसके पड़ाव हैं अलग-अलग जी जी
तो वो अपनी जगह होगी और फिर उसके साथ मार्केट खुलेगा तो फिर आपके उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे तो एक स्केल को पकड़ेंगे विच इज इवेंचुअली जो चार पांच साल में वो रिजल्ट आप देखेंगे. फॉरन जो है आप उसके बाद रिलीफ नहीं देखेंगे मुझे लगता है इसलिए आप जो रीरेटिंग हुई है ग्रोथ
जी,
की ग्लोबली और हमारे केस में तो बहुत कम हुई है
हाँ.
तो वो इसलिए हुई है कि हमें वो अपसाइड शायद हमें अगले 365 दिन में ना मिले
जी.
आगे बढ़ते हैं श्रोताओं. भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 45 गीगावाट की अब तक की सबसे अधिक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि दर्ज की है. एक सोशल मीडिया पोस्ट में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि ऊर्जा सुरक्षा सतत विकास और विकसित भारत के दृष्टिकोण के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है. उदयन
देखिए ये ऐसा एक वक्त है जहां पे इसको फिलिप बोलते हैं कि यू गेट अ लेग अप उसको स्पीड बढ़ाने का ये बहुत अच्छा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है क्योंकि अभी एक कोट है कि यू शुड नेवर लेट अ गुड क्राइसिस गो वेस्ट क्योंकि वो उसमें एक अपॉर्चुनिटी
यानी आपदा में अवसर जरूर तलाशिए
बिल्कुल और हम ऑलरेडी कर रहे हैं कई देश तो सीधा सोलर पैनल वगैरह इंपोर्ट करते हैं हम उस इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकते हैं और कई प्रोग्राम्स ऑलरेडी हैं कामयाबी के साथ चल रहे हैं
जी. एंड लेट्स मूव ऑन टू कमोडिटीज. ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस रजिस्टर्ड अपटिक टुडे. Brent crude was trading almost 3.2% up at $97.75 per barrel, while West Texas Intermediate crude was trading over 4.3% up at $98.57 per barrel when reports last came in. And now let's take a look at the prices of gold and silver in the Indian bullion market. 24-carat gold was trading 0.6% up at 1,52,680 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.6% down at 2,39,320 rupees per kilogram a short while ago.
Multi commodity exchange mein June anubandh wala sona aadha pratishat badhkar 1,52,500 rupees prati 10 gram par tha aur mai anubandh wali chandi 0.8 pratishat girkar 2,48,053 rupees prati kilogram par karobar kar rahi thi. उदयन कार्यक्रम में आने और हमारे सारे सवालों के इतने उत्साहपूर्वक जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
धन्यवाद.
एंड बिफोर वी क्लोज अ रिमाइंडर ऑफ हेडलाइंस. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन. सेंसेक्स फॉल्स ओवर 900 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स बिलो 23,800. मेजर एशियन इंडिसेस एंड इन नेगेटिव जोन. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. We'll be back tomorrow at the same time. Till then, from the entire team, goodbye.
Namaskar. Namaskar.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.